अपने रुचि का ना हो, और रोज धूप में, और वो भी करारी धूप में नंगे पांव पैदल चलना पड़ता है। 1 किलोमीटर हो तो भी चल जाए बात, 2 हो तो चल जाए, 3 हो चल जाए, 7, 10, 12, 13, 15, 30, 35, 40 किलोमीटर तक परिक्रमा में पैदल चलना पड़ता है और लोग बाग चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न लीला स्थलियों को देखते हैं, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी टांग में चोट लग जाती है, कभी वो कांटे चुभ जाते हैं, और आम तो यही बात है, जुकाम लग गया, खांसी लग गई, वायरल हो गया, फिर भी रोज सुबह 5 बजे परिक्रमा के लिए सब तैयार हो जाते हैं। इतने कष्ट के बाद जब परिक्रमा समाप्त होती है तो सब यही कहते हैं, ओ इतनी जल्दी समाप्त हो गए, हम अगले साल फिर आएंगे। देखो जो मैं बताना चाहता हूं उसको अच्छी तरह से समझना, हम अगले साल फिर आएंगे। आपको कष्ट नहीं हुआ, आपको कोई दुविधा नहीं हुई, कष्ट दुविधा सब कुछ होते हुए भी एक ऐसा सुकून आनंद और उल्लास अनुभव होता है कि दिल वहां से जाने को नहीं करता, और फिर दिल करता है कि हम अगली बार फिर से आए। श्री गुरुदेव इस चीज को बड़े सुंदर रूप से बताते हैं, ये जो परिक्रमा का आनंद है वो शरीर और इंद्रियों को नहीं मिलता, वो किसको मिलता है? वो आत्मा को मिलता है। ये वो खुराक है जो आत्मा को मिलती है, और आत्मा उस खुराक को पाकर जिस तरह से आनंद का अनुभव करती है, उस आनंद में इतनी लहरियां हैं, इतनी इंटेंसिटी है, इतनी गहनता है कि शारीरिक समस्त कष्ट उसके आगे क्षुद्र हो जाते हैं, बहुत लघु हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। नवदीप धाम की परिक्रमा का महत्व क्या है? क्योंकि अभी अभी हम परिक्रमा करके आए हैं, उसका सरूर हमारे अंदर छाया हुआ है। नवदीप धाम परिक्रमा का महत्व श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़े ही सुंदर रूप से बताया है अपने एक ग्रंथ में, जिसका नाम है नवदीप धाम परिक्रमा। महाप्रभु बोलते, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने वर्णन में बतलाया, जब भगवान ने देखा कि ये जीव मेरे से विमुख होकर इस संसार में कष्ट पा रहा है, इसको मेरा प्रेम जब तक नहीं मिलेगा ये तब तक संतुष्ट नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है कि इसको मैं वापस अपने पास लूं। उसके लिए भगवान सोचते हैं मुझे क्या करना पड़ेगा, भगवान सोच रहे हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए हम नहीं सोच रहे, कौन सोच रहे हैं? भगवान सोच रहे हैं। लगता नहीं है ये बात सही है, पर सच्ची बात यही है, मैं क्या करूं, कलयुग आ गया, कलयुग में और हमारी याददाश्त और हमारे बुद्धि
She helps us for the programs.
और पाप में हम लोग डूबे रहेंगे, ऐसी अवस्था में किस तरह से हमारा कल्याण हो? तो भगवान सोचते हैं कि जिस समय रोग गहरा होता है उस समय जो डॉक्टर है वो हाई पोटेंसी की दवाई देता है, जितना जितना रोग ज्यादा होगा उतनी उतनी हाई पोटेंसी की दवाई दी जाती है। तो हमारे वैद्यराज भगवान ने सोचा, कृष्ण ने सोचा कि कलयुग में रोग गहरा होने के कारण अब ये अच्छा है कि मैं अपना सबसे ज्यादा शक्तिशाली नाम, शक्तिशाली धाम और शक्तिशाली रूप और शक्तिशाली लीला का प्रकाश करूं। जो लीला, जो धाम, जो नाम आज तक छुपा के और गुप्त करके रखा हुआ था, आज कलयुग में उसको मैं प्रकाशित करूं। भगवान ने ऐसा सोचा। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो आज से 525 वर्ष पहले भगवान कृष्ण स्वयं राधा जी का भाव लेकर अपना वो रूप प्रकाशित किया जो गुप्त था लेकिन बड़ा पावरफुल है, वो है रूप चैतन्य महाप्रभु का। उन्होंने अपना वो धाम प्रकाशित किया जो जो आज तक गुप्त था लेकिन बड़ा ही शक्तिशाली, वो धाम प्रकाशित किया नवदीप धाम। और उन्होंने अपना नाम प्रकाशित किया जो अभी तक गुप्त था। विष्णु सहस्त्र नाम हम जानते हैं, कृष्ण के नाम भी जानते हैं, लेकिन जो नाम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो महाप्रभु का नाम था वो उन्होंने प्रकाशित किया और अपने हरे कृष्ण महामंत्र के संग उन नामों को जोड़कर हम लोगों को एक वो पद्धति सिखाई, वो एक सिस्टम दिया जो सबसे ज्यादा सामान्य, सबसे ज्यादा सरल और जो पाप और अपराध की भी कोई ध्यान नहीं देता, ऐसा सुंदर नाम दिया। कैसे? निताई गौर प्रेमानंदे। इस नाम को प्राप्त करके हम बड़ी जल्दी अपनी भक्ति में उत्तरोत्तर उन्नति कर सकते हैं, उत्तरोत्तर नहीं तेज स्पीड से उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम ये धाम ये रूप भगवान के हमारे समस्त अपराधों को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। भगवान के नाम जाप करने में बड़ी ही शक्ति है, हमारे सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान के धाम में, नवदीप धाम में भक्ति करने से हमारे अपराध भी क्षमा हो जाते हैं, अपराध सहित भी भक्ति कर देते हैं। सिर्फ एक बार निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलते हैं, उससे पाप के रहते हुए भी भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। सबसे सहज मार्ग, सबसे सरल रास्ता और ऐसी ऊंची चीज मिलती है, वो मिलती है भगवान कृष्ण की ब्रज की रसमयी भक्ति जिसको आज तक ना दिया। इसलिए जो चीज भगवान ने आज तक ना दिया वही प्रेम, ब्रज भाव का प्रेम आकर लुटा दिया, नदिया। जिस जगह भगवान ने ये जन्म लिया उस जगह का नाम है नदिया। तो जो आज तक ना दिया वो प्रेम भगवान ने आके लुटा दिया, कहा नदिया। तो नदिया में आकर भगवान ने उस प्रेम को लुटाया। लुटाने के बाद उसको खोलने के बाद इसकी डीलरशिप दे दी उन्होंने, कृष्ण ने अपने भैया बलराम यानी नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु उनसे भी एक हाथ आगे, उन्होंने तो घर घर जाकर सबसे प्रार्थना की और उस प्रेम को लुटा दिया जो प्रेम आज तक न दिया पर आकर दे दिया ना दिया। और वही प्रेम जब नित्यानंद प्रभु ने और दयाल बनकर अपने परिकरों को और ज्यादा अथॉरिटी दे दी और वही परिकर तब से चले आ रहे हैं और हम लोगों को खाली इस दुनिया में नहीं, इस नदिया में नहीं, सारे विश्व में उस प्रेम को लुटा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी उस ही श्रृंखला के एक कड़ी हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और अपने परिकरों के द्वारा सारे विश्व में दिया। आज हमारे गुरु महाराज जी भी 90 वर्ष की आयु में सारी दुनिया में उस प्रेम को जो आज तक ना दिया, तो वो प्रेम जो आज तक ना दिया श्री गुरुदेव ने दिया लांग कर ना दिया। अब नदिया को पार करके लांग कर ना दिया और दिल्ली में दिया, यूरोप में दिया और विश्व में दिया, ना दिया वो प्रेम जो आज तक भगवान ने ना दिया।
बोलो गुरु महाराज की।
मैंने श्री गुरुदेव के उन्मुख एक चार लाइनें लिखी थी और मैंने महाराज जी को सुनाकर और उनसे उसकी कृपा प्राप्त करके गुरुदेव के लिए जो मैंने लिखा था वो चार लाइनें आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और उसके बाद मैं अपना वक्तव्य बंद कर दूंगा और आगे का कार्यक्रम महाराज जी का हम लेक्चर सुनेंगे। श्रील गुरुदेव, मैं धूली कणा बन के चरणों से आपके लिपट जाऊं, मैं धूली कणा बनकर चरणों से आपके लिपट जाऊं। पर सोच के ये बात, पर सोच के ये बात कुछ कुछ भयभीत हो जाऊं, जब माधव महाराज करें चरण प्रक्षालन तो जल में घुल करना बह जाऊं। चरण रज बनना चाहता हूं पर डर भी लग रहा है। मौजों की मौज तो देखो चरणों से लिपटी रहती है, मौजों की मौज तो देखो चरणों से लिपटी रहती है, पर आप जब पलंग पर आते हैं तो बिचारी विरह सहती है। पर आप जब पलंग पे आते हो तो बिचारी विरह सहती है। चरण पादुका सदा महान, कोई कैसे करे गुणगान, पर वो भी तो दूर रहती है, मिलन से ज्यादा आपके श्री चरणों का विरह सहती है। हमेशा तो कहते नहीं है चरण पादुका, चरणों की तो बात ही क्या, मैं आपके नख पे वारी जाता हूँ, इसकी सुंदर छटा से मैं कोटि चंद्र सुशीतलता पाता हूँ। पर गुरुदेव आपके चरण नख भी बनने की चाहत से कट लाता हूँ, हर पूर्णमासी पे नख के कट जाने से मैं भय खाता हूँ। क्या चाहूं क्या ना चाहूं, बस अनचाहा सा बना रहता हूं। आज व्यास पूजा के अवसर पे यही प्रार्थना कहता हूं, मुझको अपने चरणों का रोए का बाल बना दीजिए, मुझको अपने चरणों का रोए का बाल बना दीजिए, या फिर चरण तल की कोई पतली रेखा में समा लीजिए, सदा रहूं स्थिर आपके चरण कमलों में, ऐसा मुझको वर दीजिए।
रखा था किसी का ना दिया, आकाश के ना दिया से रामचंद्र गले में डाल दिया।
नमो विष्णु पदाय राधिकाया प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदरे माधुरे गुणेशच युक्तम वरम वरण्यं पुरुषम महंतं नारायणं शिवसदमं विगतिनां भक्त शिरोमणि च कृष्ण पदाब्धा धृतायिका हृदय चेत चेतन लीला मृत सार सरं नारायण त्वं सततं प्रपदये वाच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हमने देखा है बड़े उत्साह से गुरुदेव को माला पहनाई जा रही है और कतार लंबी थी और लंबी होती जा रही है। इस उत्साह को हम बनाए रखेंगे, ऐसा उत्साह और भी गुरुओं के सामने देखने को मिलता है और हमें पता चलता है कि भक्तर इससे भी ज्यादा थी और उत्साह इतना ज्यादा था कि इतने लोग भी मर गए थे, उत्साह खत्म नहीं हुआ था। लेकिन इस उत्साह को हमने समझना है कि किस उत्साह के पास हमने गुरुदेव के पास आना है। ये उत्साह क्या होता है, क्या गुरुदेव कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो उत्साह के काबिल है। हमारे शास्त्र कहते हैं एक आचार्य कोई नई चीज नहीं देता, एक आचार्य कोई नई चीज नहीं दे रहा है, जो उसके गुरु ने उसको दिया था वही 100% आपके सामने पेश करना है, वो नया उत्साह पैदा करा देता है। हर आचार्य आके एक नया उत्साह हमारे में पैदा करता है। इस भावना को, ये उत्साह क्या है इसको समझेंगे। गुरुदेव अपने गुरुदेव की वाणी को लेके आए हैं और उन्होंने हमें ऐसा उत्साह पैदा कर दिया उसी वाणी को देके। वो वाणी क्या थी, गुरुदेव हमें बताते हैं नर देहम सुलभम सुदुर्लभम। अरे भाइयों सुनो, ये नर देह जो है सुलभ मतलब मिल गया है, ये नर देह 84 लाख योनियों के बाद ये नर देह मिल गया है, सुलभम मतलब मिल गया, सुदुर्लभम अरे भाई ये आम बात नहीं है, दुर्लभ बात है। नहीं नहीं, ये दुर्लभ बात भी नहीं है, सुदुर्लभम ये बहुत दुर्लभ हो गया, क्योंकि ऐसे तो मनुष्य जीवन बहुत और घूम रहे हैं। कितने लोग आए यहाँ पे, 300-500, लेकिन दिल्ली के सारे लोग क्यों नहीं आ गए? वो भी तो मनुष्य जीवन में आए हुए हैं। इसलिए आपका जो जन्म है दुर्लभ नहीं है, ये सुदुर्लभ हो गया है, क्योंकि आपको ऐसे संत के दर्शन मिले हैं जिन्होंने आपको ऐसा उत्साह दिया है। आगे बोलते हैं श्रीमद् भागवत में, प्लावं सुकल्पं। ओ भाई सुनो, ये जो शरीर है, ये शरीर सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए होता तो ये तो गधे और सूकर जितने भी हैं ये सब कर रहे हैं, खाना पीना सोना तो कर रहे हैं। इसको शरीर को क्या बोला गया है? प्लावं। ये प्लावं क्या होता है? ये शरीर को श्रीमद् भागवत में किश्ती बोला गया है। किश्ती बोला गया है, हमें तो नजर नहीं आ रहा है, हम तो देखते हैं कि इसको इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसको किश्ती बोला गया है। किश्ती किस काम आती है? किश्ती भव सागर से पार होने के काम आती है, समुद्र के पार होने के काम आती है। प्लावं सुकल्पं, ये आत्मा इसमें बैठी है और ये किश्ती है इस भव सागर से पार करने की। भव सागर में लंबे लंबे हिलोड़े आ रहे हैं, किस चीज के? बड़े लंबे लंबी लहरें हैं, उसमें डूब सकते हैं आप। उसमें क्या है? जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी ये आ रहे हैं। प्लावं सुकल्पं, तो क्या करना चाहिए? कुरु कर्णधारं, इस किश्ती में कर्णधार मतलब कैप्टन, उसको कैप्टन बनाओ। किसको? गुरु को। गुरु को कैप्टन बनाएंगे। हाँ हाँ, हमने दीक्षा ले लिया प्रभु जी, हमने गुरु को कैप्टन बना लिया। बड़े दुख की बात है कि अभी आपने कैप्टन नहीं बनाया है। कैप्टन अभी हमारे परिवार, हमारी इंद्रिय तृप्ति ही हमारे कैप्टन बने हुए हैं। यहाँ पे बोला गुरु कर्णधारम, इस किश्ती को गुरु के अनुगत में कर दो, वरना ये हिलोड़े जो चल रहे हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के लिए डूबेंगे। फिर बोलते हैं प्लावं सुकल्पं गुरु कर्णधारं मयानुकूलेना निभास्वतरितम्। तो कहते हैं माया मतलब भगवान बोल रहे, माया मतलब मैंने किया, अनुकूल किया आप लोगों के लिए। क्या अनुकूल किया? निभास। निभास मतलब जो हवा बह रही है, कौन सी हवा? आपको गुरु मिले, आपको शास्त्र मिले, आपको वैष्णव संघ मिला, ये वही हवाएं हैं जो आपको इस छोर से दूसरे छोर पे ले जाएंगी, जहां पे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं सताएगा। ये गुरुदेव इसके लिए आए हैं। ऐसे तो हजारों आपको नजर आ जाएंगे, लंबी कतारें भी नजर आ जाएंगी, यहां से लंबी है वो, लेकिन आप बड़े ही ऐसा जो ज्ञान जो गुरुदेव ने हम लोगों को दिया है ये कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए कहते हैं गुरु कर्ण धारा, ऐसे गुरु को अपनाना है जो जन्म मृत्यु के बंधन से पार लेके जाएगा। मयानुकूलेना निभास्व तरितम्, आप तर जाओगे ऐसी हवाओं को। कौन सी हवाएं हैं? ये वही भाव, ये भाव रूपी हवाएं जो गुरुदेव के हृदय से निकल के आप सब लोगों के हृदय में पहुंची है, तभी तो आप यहाँ पे आए, बाकी लोग क्यों नहीं आ सके? तो गुरु की कृपा आप पे पड़ी और ये उत्साह आपके अंदर आया है। इस उत्साह का मतलब है वो भावनाओं को ग्रहण करना है जो ऐसे सदगुरु देने आए हैं, जो रूप गोस्वामी के अनुगत में जो भावनाओं को हम लेने आए हैं उसी को लेंगे। इस मंदिर का वैशिष्ट वही है, वरना मंदिर में इस दिल्ली में मंदिरों की कमी नहीं है, इससे हजारों बड़े बड़े मंदिर हैं। जब मैं घर से पहले चलता था तो हमारे माता पिता बोलते थे, अरे भाई इतना दूर तुम जाते हो, रस्ते में कितने मंदिर आते हैं, बिरला मंदिर है, ये मंदिर है, उसका मार्बल ज्यादा सफेद है और भी अच्छा है। लेकिन मंदिर में क्या होगा? मंदिर चार दीवारी नहीं है। आज सुबह एक व्यक्ति आके गुरुदेव को बोलता है, मैं अपने गुरु का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अरे भाई, गुरु 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 करने से गुरु नहीं मिलते, गुरु की भावनाओं को लेना है। उस भावनाओं को हमारे गुरुवर ने, पूरे गुरुवर ने हमारे गुरुदेव के हृदय में दे दिया है। हम इसलिए गुरु के चरणों में आए हैं, इस उत्साह को उस लिए बना के रखा है। मयानुकूलेना निभास्व तरितम् पूमम्। पूमम् मतलब पुरुष, वो व्यक्ति पूमम् भवति न सतरेत स आत्महा। जिस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन लिया और अपने शरीर को उस किश्ती के रूप में भव सागर से पार कराने को नहीं लिया, और जिसने ऐसे गुरु का शरणागत नहीं किया है, वो भी क्योंकि गुरु का आजकल तो गुरु धारण करने का फैशन हो गया है। हाँ जी, हमने भी गुरु धारण कर लिए है। गुरु किस लिए धारण करे जाते हैं? उत्साह तो उनमें ज्यादा देखने को मिलता है आपसे। अरे भाई, वो तो लाइनें कतार तोड़ देते हैं और गुरु के दर्शन करने आते हैं, अपनी जाने भी खेल लेते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, उत्साह और बढ़ेगा, लेकिन किस चीज के लिए? भव सागर से पार करने के लिए गुरु की भावनाओं को समझेंगे। पूमम भवदिन, जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया? आत्महत्या करी। उसने क्या किया है? सुसाइड किया है, सुसाइड से कहा जाएगा वो, सुसाइड से नरक भी नहीं मिलेगा, भूत की योनि मिलने वाली है। ये कहा गया हमारे शास्त्र में, जो व्यक्ति सुसाइड करता है उसको अगला शरीर नहीं क्या मिलेगा, भूतों का शरीर मिलने वाला है। सत्तरेत आत्महा, उसने आत्महत्या कर ली। ये जीवन को, इस आत्मा को जो आप हैं, जीव को इस संसार में पार कराने के लिए शरीर मिला, उससे भी अच्छा ये शरीर मिलने पे भी हमको ऐसे गुरु वर मिले जो हमको इस भावना से, इस भव सागर से पार करा के राधा कृष्ण के चरणों की, राधा दासियों की, बाल्यदासी की भक्ति देने को आज आए हैं, जो बड़ी ही विरली है। अधिक समय ना लेते हुए मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का वशिष्ठ हमारे रूप गोस्वामी के वशिष्ठ से आया है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने हम लोगों में एक उत्साह भर दिया है, वो नया है, ये आचार्य ही कर सकता है। ऐसे रूप गोस्वामी के अनुगत में और भी कई लोग नजर आएंगे, लेकिन ऐसा उत्साह आपको कहीं नहीं नजर आएगा। इसीलिए इनको कहा गया है हमारे कोटिया संप्रदाय के जो आज के मूल आचार्य हैं, वो है श्री भक्ति वेदांत स्वामी नारायण महायान।
वैष्णव वैष्णवी कर्मचारी सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते सबके हाथों की भाग बातचीत। अभी अभी गुरुदेव के हम लोग साक्षात दर्शन भी कर रहे हैं और गुरु क्या चीज गुरु से प्राप्त करनी चाहिए। अभी रोहिणीनंदन प्रभु जी ने आपको उसका परिचय कराया, लेकिन गुरु का जो महत्व है वो हम लोगों के जीवन में कैसा है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण हम सबके पिता हैं और हम सब कृष्ण की संतान। जिस प्रकार इस जगत में हम लोग जब पिता बनते हैं, संतान प्राप्त होती है, तो बड़े उत्सुकता पूर्वक, बड़े उत्साह पूर्वक पिता और माता अपने बच्चे को किसी गुरु के पास ले जाते हैं और गुरु को समर्पित करते हैं कि इसका आप लालन पालन करिए, ज्ञान के द्वारा इसको मार्ग दिखाइए, इसको सत ज्ञान दीजिए। और उस गुरु को माता पिता पूरा अधिकार दे देते हैं कि इस बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षित करने के लिए आप जैसा भी उपाय करना चाहते हैं हम लोग की तरफ से पूरी छूट है। हम नहीं बोलेंगे कि आपने इसकी पिटाई करी, हम नहीं बोलेंगे कि आपने इसको अपने आश्रम में रख लिया या हॉस्टल में रख लिया, या हम इस पे भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि हम मिलने भी आए तो आपने मिलने से मना कर दिया। गुरु की ऐसी महिमा है और जब कृष्ण हमारे पिता हैं, उनकी हम सब संतान हैं, उन कृष्ण की भी ऐसी ही इच्छा है। वो कृष्ण भी हम सबको, अपने बच्चों को गुरु को समर्पित करना चाहते हैं। और जिस प्रकार इस जगत में पिता अपने संतान को गुरु को समर्पित करते हुए एक किस प्रकार का गुरु का मन में आदर भाव रखता है, किस प्रकार से अपनी संतान को सब प्रकार से शिक्षा देता है कि अब जो गुरु कहेंगे वही करना है, यही कृष्ण भी चाहते हैं। कृष्ण का भी मन का भाव यही है कि मैं तुम्हारा पिता जरूर हूं, लेकिन आपने गुरुकरण अगर नहीं करा, जिस गुरु को मैं समर्पित कर रहा हूं उसको अगर आपने स्वीकार नहीं करा, उनका आदर नहीं करा, उनके वचनों का पालन नहीं करा, तो जिस तरह से पिता पिटाई करता है बच्चा अगर स्कूल में गुरु की बात ना माने, तो ऐसे कृष्ण भी अपने संतान की पिटाई करते हैं अगर गुरु के प्रति उसकी संतान का, पिता की संतान का अगर समर्पण या गुरु के प्रति आदर भाव ना हो। तो अब सब लोग इस बात पर विचार करें, शास्त्र भी इस बात में काफी प्रमाण है। जैसे भक्त प्रहलाद, नृसिंह भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अपने गोद में बड़े प्यार से बिठाया और पूछा कि बेटा बताओ तो जरा क्या शिक्षा प्राप्त करें। तो प्रहलाद महाराज ने क्या बतलाया कि विष्णु ही सारे जगत के एक मालिक हैं, हम विष्णु के सेवक हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं। हिरण्यकशिपु तो एकदम से आग उगला हो गया और उसको कितने तरह से मरवाने का प्रयास करा, लेकिन प्रहलाद महाराज की गुरु निष्ठा में जरा सा टस समझ नहीं हुए। दशरथ महाराज को देखिए, अपने चारों बच्चों को गुरु वशिष्ठ जी को सौंप दिया और उसके बाद वशिष्ठ महाराज जी ने जिस प्रकार से चारों भाइयों को उपदेश दिया, शिक्षा दी, वह जीवन के सारे डिसीजन अपने पिता से पूछ के नहीं करते थे, यहां तक कि अपने पिता की आज्ञा का पालन किस प्रकार से करना चाहिए उसकी भी शिक्षा अपने गुरुदेव से प्राप्त करते थे। और गुरुदेव जिस प्रकार से उन चारों भाइयों को शिक्षा देते, वो केवल अपने जीवन का आधार भी उसी को ही मानते थे। गुरु का कितना महत्व है हमारे जीवन में, गुरु ऐसी वस्तु है जो कि भगवान भी गुरु के प्रति सदा मन में एक ऐसी प्रार्थना भाव रखते हैं कि आप मेरे बच्चों को एक सदमार्ग दिखा करके इनके जीवन का उद्धार करिए। एक कृष्ण की भी यही स्थिति है। तो हम सब लोग इस बात पर भली भांति विचार करें, क्या हम लोगों ने अपने जीवन में, विशेष करके मैंने खुद ने, क्या गुरु को इस प्रकार से लिया जीवन में सीरियसली, क्या गुरु को मैंने इस प्रकार से स्वीकार करा, गुरु जी से हरिनाम लिया, गुरु जी से दीक्षा ली, क्या गुरु जी के वाक्यों को अपने जीवन का आधार बनाया? अगर नहीं बनाया तो किसका आधार बना रहा हूं, पिता सेवा, माता सेवा? नहीं, पिताजी तो बड़े क्रोधित हो जाएंगे, बड़े रुष्ट हो जाएंगे। क्यों रुष्ट हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि पिताजी तो चाहते हैं सद्ज्ञान द्वारा उसकी संतान का जीवन मंगलमय हो, और यदि गुरु का ही सम्मान नहीं करा, गुरु के वचनों का ही पालन नहीं करा, तो फिर पिता तो रुष्ट है ही है, पिता रुष्ट तो सारा समाज रुष्ट, तो आप क्या गति रही फिर हम लोगों की? तो गुरु की ऐसी महिमा है, हम लोग अपने जीवन में इस प्रकार से गुरु को समर्पित हो, इस प्रकार से अपने गुरु जी के वाक्यों को अपने जीवन का एक आधार बनाए कि हमारे पिता भी गर्व से कह सके कि ये मेरी संतान है। गुरु की ऐसी महिमा है। और हम सब विशेष करके मैं गुरु जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करना चाहता हूं कि गुरुदेव मेरे मन में भी आपके वचनों के प्रति एक ऐसी श्रद्धा हो, एक ऐसा समर्पण हो कि बस अपने जीवन को उसी प्रकार से एक आपके वचनों का आधार बना करके चलूं कि मेरे जीवन में जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के जीवन में कितनी भी विघ्न बाधाएं डाली, लेकिन प्रहलाद महाराज का गुरु निष्ठा कभी भी टस से मस नहीं हुई। राम जी के जीवन में कितने उन्होंने, राम जी ने अपने जीवन में, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, भरत जी ने कितने बड़े बड़े बलिदान किए, लेकिन गुरु की बात को कभी भी टस से मस नहीं होने दिया। जब तक मैं अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी श्रद्धा नहीं रखूं, अपने गुरुदेव के प्रति जब तक ऐसे अपने जीवन को आधार न बनाओ गुरुदेव को, तो मेरे को कैसे ज्ञान होगा कि मैं ये आत्मा हूं, मैं ही शरीर नहीं हूं, ये देह आत्मबुद्धि मेरी कैसे जाएगी? गुरु के प्रति तो श्रद्धा भी करी नहीं, गुरु जी के वचनों के प्रति तो अभी विश्वास है नहीं। तो गुरुदेव आपसे अति विनम्र भाव से प्रार्थना है कि मेरी आपके श्री चरण कमलों में ऐसी अटूट श्रद्धा हो, ऐसा मुझे आप शक्ति प्रदान करें। बादशाह कल बंधु शरण में जाना सफल है, नहीं तो अन्यथा नहीं है। अगर हमने गुरु के वचनों का पालन नहीं किया तो गुरु धारण करने से क्या लाभ। तो अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, गुरु की बात सुनते हैं, कथा में आएंगे, गुरु जी के उपदेश सुनेंगे, परंतु अपने जीवन में नहीं लगाते। कारण क्या है? क्यों? एक बात गीता में भगवान कह रहे हैं, नवे अध्याय में भक्ति की महिमा बतला रहे हैं दूसरे श्लोक में, कि ये सर्वगुह्यतम ज्ञान है, सब ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, करने में बड़ी सरल है, सुख से संपन्न होती है, सभी धर्मों का यही सार है, ये कह रहे हैं। तो पूर्व पक्ष कह सकता है, जब भक्ति की इतनी महिमा है तो संसार के सारे जीव भक्ति क्यों नहीं करते, जब ये सब कुछ दे सकती है, सबसे बड़ी वस्तु दे सकती है, आसानी से दे सकती है, तो क्यों नहीं कर रहे। हम देखते हैं, हम लोग तो भक्ति नहीं करते। तो भगवान उसके उत्तर में कहते हैं, जीवों की मेरे वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, इस बात की हमारी श्रद्धा नहीं है। हमारी गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं है कि गुरुदेव जो कुछ कह रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं, उनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं। तो गुरु के तो लक्षण शास्त्र में कहा, जो संसार से पूर्ण भी रखता है एक लक्षण भी होता है, तो उनको हमारे से क्या लेना, उनका हमारे से कोई स्वार्थ नहीं। तो जो कुछ भी हमें कहते हैं वो हमारे कल्याण के लिए, तो ऐसी श्रद्धा हमारी उनमें नहीं है। जब हमारे भगवान के वाक्यों में भी पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तो गुरु के वाक्यों में भी नहीं हम करते। और अधिकांश हम गुरु को समझते हैं, गुरु भी हमारे जैसे मरणशील व्यक्ति,
हम सोचते हैं हम लोग खाते पीते सोते हैं, हम भी बीमार होते हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हम भी शरीर त्याग करेंगे, गुरु भी ऐसे उनको भी देख रहे हैं, गुरु जी भी तो बीमार पड़ते हैं, गुरु जी भी तो वृद्ध हो गए। तो ये गुरु जी में मरते बुद्धि रखते। तो भगवान ने कहा गुरु में कभी मरते बुद्धि मत रखना। आचार्य माम विजानिया, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। भगवान के प्रकाश है गुरुदेव, कृपा करके भगवान हमारे सामने गुरु रूप में प्रकट होते हैं। भगवान पहले अंदर अंतर्यामी रूप में चैत्य गुरु में है और हम अभी उनके दर्शन नहीं कर सकते, उनको नहीं देख सकते, हम इस योग्य नहीं है कि भगवान को देख सके, इसलिए भगवान कृपा करके हमारे सामने महंत रूप में प्रकट होते हैं, साक्षात गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर हम भगवान की बात हृदय में जो बैठे अंतर्यामी परमात्मा उनकी आवाज नहीं सुनते, वो जो कह रहे हैं हम सुन नहीं पाते, मगर गुरु सामने साक्षात जो बोलते हैं वो तो सुन सकते हैं। तो गुरु के मुख से जो वाक्य निकल रहा है वो समझो भगवान की वाणी है। इसलिए कहा आचार्य माम विजानिया, कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, जो कुछ भगवान कहते हैं मैं कहना चाहता हूं गुरु के मुख से बोलता हूं, इसलिए उनकी कभी अवमानना मत करना, उनकी अवज्ञा कभी मत करना। और ना मरते बुद्धि असूय, उनमें मरते बुद्धि मत रखना कि वो मरणशील है, हमारे जैसे कर्म बंधन में पड़ के उनका जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। वो भगवान के धाम से आए हैं, हम लोग कल्याण करने के लिए आए हैं, हम लोग को वापस भगवत धाम में ले जाने के लिए आए हैं। ये गुरु का स्वरूप है, ये विश्वास रखेंगे गुरु जी के ऊपर तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। गुरु जी के वचन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे कि यही हमारा परम कल्याण का मार्ग है और कोई दूसरा नहीं मार्ग है। अपने मन बुद्धि से तो हमने करोड़ों जन्म में अपने सारे जीवन बर्बाद कर दिए हैं, ये जो मनुष्य जन्म मिला है दुर्लभ, इसको हम सफल करें। इस जन्म में भगवान ने कृपा की, या मैं भगवान की घन कृपा की घन मूर्ति साक्षात गुरुदेव हमारे सामने उपस्थित है, कृपा देखनी है भगवान की तो ये सामने है, इससे ज्यादा भगवान कृपा नहीं कर सकते। ऐसे गुरु जो दे दिए हमको, ये भगवान की हमारे ऊपर असीम असीम कृपा। अगर हम इस कृपा का लाभ नहीं उठाएंगे तो हमारे से बड़ा दुर्भाग्य भी कोई नहीं। जो हमारा सौभाग्य है वही आज हमारा ना लेने से परम दुर्भाग्य भी हो जाएगा। तो हम लोग गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वो हम पे कृपा आशीर्वाद करें, हमारी ऐसी बुद्धि हो उनके वचनों का हम अपने जीवन में पालन कर सके। वांछा कल्प
सभी लोग प्रेम से गुरु जी के चरणों में शरणागत होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा कर प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म जय विष्णु पाद परमहंस सुप्रीवराज का आचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रवेश जय विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विनोद स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरण सरोज में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। उपस्थित सन्यासीगण ब्रह्मचारीगण सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना है कि गुरु महाराज हमको शुरू में बोलने का अवसर दें, क्योंकि बाकी सब तो पिलर्स हैं, वो जो हमारे हमारी इंफॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड है वही बोल देते हैं, फिर हमारे तो बाद में बोलने के लिए कुछ बस नहीं। वैसे मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, ये लोग तो बोल सकते हैं, हमसे जो छूट जाएगा वो ये लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो थोड़ा मोड़ा बात है वही ये लोग बोल दिए तो हम बोलने के लिए फिर कहाँ से लाएंगे। जैसा कि पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु ने बताया कि नवदीप का भी सरूर है, तो अभी जब हम मंदिर में आए तो थोड़ा बैठ करके विचार करे थे, श्रीमन महाप्रभु की जो देन है इस जगत को, हम जीवों को, उसमें विचार किया, हरिनाम श्रीमन महाप्रभु की देन है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व श्रीमन महाप्रभु की देन है, वृंदावन को फिर से प्रकाशित करना श्रीमन महाप्रभु की देन है, और ये जो माधुर्य रस की जो भक्ति है ये भी श्रीमन महाप्रभु की देन है, लेकिन ये सब तो देन है श्रीमन महाप्रभु की, लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई विशिष्ट देन है, अगर हमारे जीवन में कुछ श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके दिया है तो कृपा करके श्रीमद गुरुपाद पद को हमारे जीवन में कृपा करके उन्होंने प्रसाद करो, सारी कृपा को उन्होंने हमारे ऊपर लेला है तो गुरुपाद पद को दिया है। गुरुपाद पद हमने सुना गुरु जी के मुख से ही सुना, रसिक शेखर परम करुण, भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर है, परम करुण है, उन्होंने कैसी कैसी करुणा करी। हाँ, बकासुर की बहन अपने स्तन पे कालकूट जहर लगा करके आई और भगवान श्री कृष्ण ने उसको बात को स्वीकार ना करके उसके मन में जो बात थोड़ा मोड़ा वात्सल्य था उसी से उसको धात्री गति प्रदान कर दी, ऐसे परम रसिक शेखर कृष्ण है। लेकिन उन्हीं कृष्ण ने फिर एक भगवद गीता में कहते हुए शर्त लगा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम् त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचि, पहले ऐसा करो तब ऐसा होगा। फिर उनसे भी परम करुण आए, उनसे भी ज्यादा परम करुण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने पात्र को पात्र नहीं देखा, प्रेम का रस का ऐसा समुद्र को बहाया जिसमें सब लोगों पर कृपा हो गई, पात्र को पात्र को देखे बिना पात्र भी बनाया और पात्र के हृदय में उस रस को भी उंडेल दिया। उनसे भी परम करुण श्रीमन नित्यानंद प्रभु, जिनका सर तोड़ दिया जगाई मधाई ने, ऐसा कई जगत में होता है कि कोई किसी का सर तोड़ दे वो बदले में कृष्ण प्रेम उसको दे दे, श्रीमद नित्यानंद प्रभु उनसे भी परम करुण। लेकिन उन सबसे भी परम करुण जो हमारे पर कृपा हुई है वही नित्यानंद अभिन्न कलेवर अचिंत्य भेदाभिन्न प्रकाश तत्व श्रीमन गुरु महाराज जो है वो हम पर कृपा करके लेकर के आए, उस कृपा को सारी कृपा को अपने परंपरा से लेकर के अपने हृदय में समेट करके और जगत में पात्र हमारे को पात्र बनाया और पात्र बना करके हमारे को कोई अधिकार नहीं होते हुए, कुछ हमें विशेषता नहीं होते हुए, कुछ योग्यता नहीं होते हुए उस रस को पकड़ पकड़ के हमारे को गर्दन पकड़ पकड़ करके उस रस का आस्वादन करा रहे, केवल यही नहीं पूरे विश्व में और गुरु महाराज की वाणी को सुन करके पूरे विश्व में जगत के लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है, लोगों के जो विशेष वेशभूषा है वो बदल रही है। हाँ, जीन्स की जगह और टी शर्ट की जगह धोती कुर्ता, हम तो पजामा पहने हैं, धोती कुर्ता लोगों के जीवन में आ रहा है, वेशभूषा परिवर्तन हो रहा है, लोगों के जो पढ़ने का जो विषय है, लोगों के जो पढ़ने का जो शास्त्र है ग्रंथ है उसमें परिवर्तन आ रहा है, पूरे जगत के जो लोगों का खान पान है उसमें परिवर्तन आ रहा है, और जो पाषाण हृदय है उस पाषाण हृदय को भी गुरु महाराज निर्मल कर करके पूरे जगत में ये हरिनाम को फैला करके और पूरे जगत के जीवों पर कल्याण करके उनको बदल करके श्रद्धा सुमन बना करके श्रीमती राधा रानी के चरणों में एक एक पुष्प को समर्पित कर रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन की केवल यही एक उपलब्धि है, बाकी जितनी भी उपलब्धियां हैं निद्रा आहार है मैथुन संपत्ति ये तो हम अनेक जन्म जन्मांतर से करते आए हैं, इस जीवन में केवल मात्र एक ही कर्तव्य है कि जिस भी हम जिस भी स्थिति में हैं, जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, इस जीवन को ऐसे गुरु महाराज के पीछे 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 चलते हुए ये पूरे पूरा जीवन हम गुजार दें। केवल इतना भी प्रयास अगर हम करेंगे तो ये परम सिद्धि होगी। और गुरु जी के पीछे पीछे चलने का तात्पर्य है कि गुरु जी के गुरु महाराज के जो आदेश है, जो उपदेश है, उनको यथाशक्ति अपनी पूरी शक्ति लगा करके उनको हृदय से पालन करें, यही गुरु महाराज के पीछे पीछे चलने का जो है ये अर्थ है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा भी जो जीवन की जो परम सिद्धि है वो हमको मिलेगी। मेरे को मैं व्यास पूजा में एक प्रार्थना की, आज भी मैं गुरु महाराज जी के चरणों में वही प्रार्थना को साक्षात में दोहराना चाहता हूँ कि गुरु महाराज मेरी को जो आंशिक स्वतंत्रता है उसका मैं जन्म जन्मांतर से दुरुपयोग करते आया हूँ, इस जन्म में भी उस आंशिक स्वतंत्रता का मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, जैसे रजोगुण जीव को बला पाप कर्म में प्रवृत्त करता है, हे गुरु महाराज आप मेरी उस आंशिक स्वतंत्रता को छीन करके मुझे बला अपने चरणों की सेवा में प्रवृत्त कर दीजिए। वांछा कर्तव्य वस्तु कृपा सिंधु धन्य विचार पतितान पावन वैष्णव।
परीक्षित महाराज जब उनको अभिशाप दिया तो वो गंगा के किनारे बैठ गए, देश पवित्र हो और साथ ही साथ में वहां पर जितने ऋषि महर्षि लोग भारतवर्ष में थे न जाने कैसे जान गए और वो आ गए उसी समय में। परीक्षित जी ने कहा, गुरु वर्ग आज हमारी मृत्यु नहीं है, आप जैसे लोग जो भगवान मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं किंतु ऐसे संतों का मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए मैं मरने से डरता नहीं। आप लोग बड़े दयालु हैं, हमें कुछ उपदेश दीजिए जो हमारा जन्म सफल हो। उसी समय में सुखदेव गोस्वामी आए, सुखदेव गोस्वामी से भी यही प्रश्न, वहां पर नारद जी कपिल और जितने बड़े बड़े लोग थे, ऋषि महर्षि भारतवर्ष के, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को कहने के लिए कहा। सुखदेव गोस्वामी ने आरंभ किया, सवई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रधोखजे अहेतुक अव्यवहिता जा भक्ति पुरुष। इसका अर्थ समझिए, इस श्लोक के माध्यम से तो इतना ही समझिए, जीव मात्र का परम धर्म यही है भगवान में तई धारावत अविच्छिन्न गति से कृष्ण के चरणों में हमारी मति हो, वो भी बिना कारण, कोई कारण ना हो, संसारिक धन, पुत्र पौत्र, परिवार, रुपये पैसे, संपत्ति नहीं, किसी के केवल मात्र किसी के। कहते हैं सबई पुंसान परो धर्म, इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया। सबई पुंसान, अन्याभिलाषिता शून्य, ध्यान कर्माभ्यनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलन। जब केवल मात्र कृष्ण के लिए तैल धारावत अविच्छिन्न गति से वैष्णव के अनुगत्य में अपने शरीर की जितनी चेष्टाएं हैं, मन की भावनाएं हैं, इसके अतिरिक्त और भी आत्मा की जो चेष्टाएं हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए हो, ये तो भक्ति हुई। किंतु उसमें दो और कारण बतलाएंगे। अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्नाभिलाष नहीं, अन्नाभिलाषिता कहा, अन्याभिलाषिता होना सहज है, अन्याभिलाष शून्य होना ये बड़ा भारी कठिन है। इसलिए उसके स्वाभाविक रूप से उसमें अन्याभिलाषिता शून्य। संसार अपने लिए जो कुछ करते हैं वो तो अपने लिए करते हैं, कृष्ण के लिए ही सभी कुछ करते हैं। और ज्ञान कर्म अध्यनावृतम, ज्ञान कर्म इत्यादि जरूरत है, जिस ज्ञान में कृष्ण तत्व का ज्ञान हो, राधा तत्व का ज्ञान हो, प्रेम तत्व का ज्ञान हो, इसकी तो आवश्यकता है, किंतु निर्विशेष ज्ञान की जरूरत, उसे भक्ति ढक जाती। और वह कर्म जिसको हम कर रहे हैं ये तो अवश्य करेंगे, किंतु यह कर्म ऐसा होना चाहिए जो भक्ति की सहायता करता, तो ये उच्च कोटि की बात है। अब इसी से आरंभ हुआ श्रीमद् भागवत, और तब आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं लब्धा सुदुर्लभम इदं बहुसंभवा, मनुष्य जीवन अर्थत है, अर्थ और परमार्थ देने वाला है, कि तू इसी में ही इसको नष्ट कर देना उचित नहीं है। बड़े बड़े देवता लोग भी मनुष्य जीवन चाहते हैं, किंतु उनके लिए दुर्लभ रहता है। देवता जन्म में भजन नहीं होता, वो अपने कर्म में लगे रहते हैं, वहां कभी काम क्रोध लोभ मोह मोह मात्सर्य इत्यादि है, अमृत ही नहीं वहां पर और भी है। अमृत पीकर के भी देवता लोग कितने दिन जीवित रहते हैं, ब्रह्मा ही जीवित नहीं रहते। इसलिए मनुष्य जीवन का कर्तव्य है लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्, मानुष्यम् अर्थदम् अनित्यम् अनिधीयम्। टूर्नामेंट जाते हैं, टूर्नामेंट माने इसी समय में, कल के लिए मत छोड़ो, परसों के लिए मत छोड़ो, जो कल परसों करना है आज ही अभी 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 करो। कोई कोई कहता है कि मैं घर छोड़ करके आ जाऊं, तो मैं कहते थे तुम्हारी इच्छा मत आओ, तुम आदेश की अपेक्षा रखते हो। जब आदेश की अपेक्षा नहीं रखे गए तब तो समझो ये योग्यता, वो किसी से पूछेगा नहीं, चुपचाप कुछ जाने नहीं और चला जाए, ये योग्यता। तो तुर्णम जते तो न पते तो अनुमित जाओ, मृत्यु के पहले ही अपनी सदगति बना लो। और वो सदगति क्या है, हमारे सभी वक्ताओं ने उसके ऊपर में भाषण दिया, मैं बहुत आनंदित हूँ कि वे तो आज हमसे भी मुझसे भी अधिक अच्छा बोलने लगे। आज रात हो गई, अधिक मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वंचा कल्पतरु भयस्य एक रिटर्न कर दीजिए। तो
हरे कृष्णा। जब गुरु जी बैठे थे आप सब लोगों ने प्रणाम किया, आप लोगों से अनुरोध है गुरु जी अपने भजन कुटी में जाएंगे, जो जहाँ एक मंदिर के हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे
सबसे
मार्गों के बाधा।
हरे कृष्ण बोले श्री गुरुदेव की, बोले श्री गुरु जी महाराज की, गौ प्रणाम हरि हरि बोल, जय जय राधा।